भगवान महावीर स्वामी नेमिनाथ भगवान आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
शिवम शुद्धबुद्धम परम विश्वनाथम शिवम शुद्धबुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न गंगम न संगम न स्वेक्षा न कायम चिदानंद रूपम ममो वीतरागम चिदानंद रूपम ममो वीतरागम न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न योगम न भोगम न व्याधिर्न शोक न कोपम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम ममो वीतरागम न हस्तौ न पादौ न घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानंद रूपम ममो वीतरागम चिदानंद रूपम ममो वीतरागम न जन्मम न मृत्यु न मोहम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा न मुद्रा चिदानंद रूपम ममो वीतरागम रूपम ममो वीतरागम त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम् न पुण्यम न पापम न चाक्षादिगात्रम् चिदानंद रूपम ममो वीतरागम न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न स्वेदम न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम नाद्यम न मध्यम न गंतम न चान्य न द्रव्यम न क्षेत्रम न कालो न भाव न శిష్యో గురునాపిహీనం నదీనం నాపిహీనం నదీనం చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం ఇదం జ్ఞాన రూపం స్వయం తత్వవేదీ న పూర్ణం న శూన్యం న చైత్యం స్వరూపం స్వరూపం నో న భిన్నం న పరమార్థమేకం చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం రూపం నమో వీతరాగం ఆత్మా రామ గుణాకరం గుణనిధిం చైతన్యరతనాకరం సర్వే భూత గతాగతే సుఖ దుఃఖే సుఖ దుఃఖే జాతే త్వయి సర్వగే త్రైలోక్యాధిపతే స్వయం స్వమనసా ధ్యాయంతి యోగీశ్వరా వందే తం హరివంశహర్షహృదయం హరివంశహర్షహృదయం శ్రీమాన్ హృదావ్యుచ్యతాం వితరాగ్ భగవాన్ కీ अपन लोग एक ही भाव का अर्थ पढ़ रहे थे। एक ही भाव गतिव मया या स्वयं कर्म बंधु घोरम दुखम भव भव गतो దుర్నివారః కరోతి తస్యాప్యస్య త్వయిజినరవే భక్తిరున్ముక్తయే చేత్ జేతుం శక్యో భవతి న తయా కోపరస్తాపయేతు జ్యోతి రూపం దురిత నివహ ధ్వాంత విధ్వంసయేతు త్వామే బాహుర్ జినవర చిరం తత్వ విద్యాభియుక్తా చేతో వాసే భవసి చ మమ స్వారముద్భాసమానస్ తస్మిన్ నమః కథమివ తమో వస్తుతో వస్తుమీష్టే ఆనందాశ్రు స్నపితవదనం గద్గదం చావిజల్పన్ యశ్యాయేత్ వైద్రణమనా స్తోత్రమంత్రైర్భవంతం తస్యాభ్యస్తా దపి చ సుచిరం దేహవల్మీకమధ్యాన్ నిష్కాశ్యంతే వివిధ విషమా व्याधया काद्रवीया प्रागे वेह त्रिदिव भवना देश्यता भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देवनिन्नीत्वयेदम् ध्यानद्वारम् मम रुचिकरम् स्वान्तगेहम् प्रविष्टः तत्किं चित्रम् विनवपुरिदम् यत् सुवर्णीकरोषि। यहां तक पढ़ने चार के अर्थ पढ़ लिए थे, अब आगे और पढ़ते हैं। लोकस्यैकस् त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधु त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तसैयां। वो पूरे पढ़ा जाएगा, एक शब्द से थोड़ी काम चलेगा, वो दोनों इकट्ठे पढ़ना पड़ेंगे। मामिकां चित्तसैयां मय्युत्पन्नम् कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयम् तौ नै कथा स्पारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमा व्यूहशीते नितान्तम् निर्मग्नं मां न जहति कथम् दुखदावोपतापा। अब इन दोनों का अपन अर्थ समझें, किस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के गुणों का गान करना भगवान की स्तुति कहलाता है। कहीं कहीं पर आचार्यों ने लिखा है कि जब किसी के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर अपन कहते हैं तो उसका नाम स्तुति है, पर अरहंत और सिद्ध भगवान के मामले में ये परिभाषा घटित नहीं होती। कहते आनंद त्याते गुणावक्तु मसक्यास त्वयि सा कथम गुणस्तोकम सदुल्लंग तद्बहुत कथा स्तुति। कहते तो ऐसा है कि गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहने का नाम स्तुति है, लेकिन हे भगवान आपके तो अनंत गुण हैं, हम पूरे ही नहीं कह सकते, बढ़ा चढ़ा के क्या कहेंगे। देखो वैसे तो गुणों को बढ़ा चढ़ा के कहना वो स्तुति कहलाएगी, लेकिन भगवान के तो अनंत गुण हैं, हम उन अनंत को भी पूरा नहीं कह सकते, फिर उसको हम और बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे क्या। हम भगवान की स्तुति करते समय इसी बात का ध्यान रखें कि भगवान के अनंत गुण हैं और उनमें से हम तो थोड़े से ही कह पा रहे हैं, और इतना ही नहीं उन गुणों के गान करने से हमारा मन निर्मल होता है। उद्देश्य हमारा स्तुति का अपने मन को निर्मल करना है, किसी तरह की कोई हमारे मन में और आकांक्षा नहीं है। हमारी आकांक्षा करने पर भी जब तक हमारे पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक पूर्ति नहीं होगी, और हम आकांक्षा नहीं भी करें और पुण्य हमारे पल्ले में हो तो हमारी सारी पूर्ति हो जाती है। सिद्धांत ये है, हम क्यों ना ऐसा काम करें जिससे कि पुण्य का अर्जन हो और हमारी अपने आप पूर्ति हो जाएगी। मांगने से तो संक्लेश होता है, लेकिन नहीं मांगा, आकांक्षा तो संक्लेश कारण की ही कारण है, इसलिए आकांक्षा नहीं की बल्कि अपना विश्वास अपनी श्रद्धा भगवान के सामने व्यक्त कर दी। उतने मात्र से भी हमारे जो पुण्य का संचय होता है उससे सारे काम आसानी से बन जाते हैं। वो यहां पर कह रहे हैं
कि लोकसैकस्तमसि भगवान निर्निमित्तेन बंधु। हे भगवान, इस लोक में या इस संसार के जीवों के लिए अगर देखा जाए तो एकमात्र आप ही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हितैषी हैं। दुनिया में बहुत लोग हितैषी हैं लेकिन निस्वार्थ रूप से कोई हितैषी नहीं है। बंधु बहुत हैं, हमारा हित चाहने वाले को बंधु बोलते हैं। बंधु का मतलब भाई है, पर वास्तव में बंधु का अर्थ है जो हमारा हित चाहे वो बंधु है। तो कह रहे हैं कि दुनिया में और भी बहुत से हित चाहने वाले लोग हैं लेकिन सबका अपना अपना स्वार्थ है, पर एकमात्र आप हैं इस संसार में संसारी जीवों के लिए निर्निमित्तेन बंधु, अर्थात निस्वार्थ भाव से आप सबका हित चाहने वाले हैं। और तो ये वासो सकल विषया शक्ति अप्रतिनी का, और हमने तो ये सुना है कि आपके पास सब जीवों के उनकी अनंत पर्यायों तक को जानने की ऐसी शक्ति विद्यमान है। देखो दो चीजें हो गई, आप सब संसार के बंधु हो और दूसरी बात आपसे दुनिया का कुछ छिपा नहीं है, सबकी सब जानते हो। हम अपनी आपके सामने क्या कहें, आप तो पहले से ही जानते हैं। देखना, हम आपसे कुछ बताएं इसका मतलब है कि हमें आप पे विश्वास नहीं है कि आप जानते कि नहीं जानते। ये तो छोटे मोटे जिसको मालूम नहीं हो उसको बताना पड़ता कि हमारी मालूम है आपको, हमें बहुत तबीयत खराब रही हमारी, जैसे अपने अपने लोगों को किसी को बता देते हैं। अब लेकिन आप तो ऐसे हो कि जो सब जानते हो, आपसे हम क्या कहें कि हमारा हमें कुछ तकलीफ है। हमारी तकलीफ भी आप जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप जो है सब जीवों के बिना स्वार्थ के हितैषी हो। अब ऐसी स्थिति में देखो भगवान के दो गुण बता दिए कि आप एक तो सब संसार के सब बातों को जानते हो और सब जीवों का हित करने वाले भी हो। अब ये दो ही चीजें भगवान आपकी हमने स्तुति करी है, अब आप ख्याल रखे रहियो। भगवान को कह रहे हैं कि देखो दो बातें हैं आपकी, दोनों आपकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने तो कितना काम किया, देखना हमने तो स्तुति कर ली और क्या काम करना था वो हमने अपने भीतर कर लिया। भक्ति स्फीताम, भक्ति के द्वारा जिसको मैंने विस्तार दिया है, ऐसी चिरम, एक दो दिन की नहीं बहुत समय से, अधिवसन मामिकाम चित्त संयाम, मैंने तो आपको अपनी भक्ति के द्वारा अपने मन रूपी सैया पर बहुत समय से विराजमान कर रखा है। आप मेरे मन रूपी सैया पर आकर के बैठे हुए हैं मेरी भक्ति के द्वारा। अब ऐसी स्थिति में जब आप सब जीवों का हित चाहते हो, ऐसा आपका गुण है, और किसी का भी आपको दुख मालूम पड़ जावे और आप उस दुख को दूर ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? मई उत्पन्नम कथमिक तथा क्लेश यूथम सहेथा, आप हमारे हृदय में आकर के विराजो और हमें कोई तकलीफ हो और आप उससे अनभिज्ञ बने रहो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सहन ही नहीं कर पाओगे मेरी तकलीफ को, और आपने अगर मेरी तकलीफ को सहन नहीं कर पाया इसका मतलब है कि आप उसको दूर करे बिना रहोगे नहीं। जैसे अपन कहते ना कि भैया आपको अगर जैसे आप कहने में आ जाता कि देखो हमें मालूम पड़ जाता तो हम तो कछू ना कछू कर ही देते, आपने हम बताई तक नहीं कि हम इतनी तकलीफ में रहे। अब अपन भगवान से क्या कह रहे हैं कि भगवान हमें बताने की आवश्यकता नहीं, हमने तो आपको अपने घर में बुला लिया, अब आप खुद पता कर लो कि क्या तकलीफ है, आप कैसे रहोगे हमारे उसमें, हमारी तकलीफ देख करके आप कैसे धीर धरोगे। ऐसा लिखा उसमें, आप धीरज धारण कैसे करोगे, मेरी तकलीफ आपसे देखी नहीं जाएगी और आप जरूर से उसे दूर करके ही रहोगे। देखो भक्ति का भी ढंग मुझे सबसे ज्यादा ये एक ही भाव स्रोत इसलिए इंप्रेस करता है कि इसमें कितने माने भाव के साथ कितने विश्वास के साथ ये भक्ति करी गई। हम लोग जो है अपना मन इन चीजों में कच्चा कर लेते हैं कि क्या करें, कितने दिन से तो पूजा कर रहे हैं, नमोकार मंत्र वो तो हम रोज फेरते हैं महाराज, और कोई बात बताओ, बहुत तकलीफ में है, नमोकार अकेले फेरे से कहा हो, भक्तांबर पढ़ लो भैया, भक्तांबर तो हम रोज पढ़ते। इसका मतलब है कि इन चीजों में कुछ हमारा होगा इनसे ये विश्वास नहीं है, करते जरूर हैं। अगर विश्वास होता तो कोई कहने की बात ही नहीं थी, हम तो अपने आराम से कर रहे हैं, और हमें जरूर से जब कर्मों का संचय अच्छे कर्मों का होगा तो मेरे सारे काम आसानी से बन जाएंगे। संक्लेश करने से कभी कोई कार्य नहीं बनता, विशुद्धि बढ़ाने से कार्य बनता है, और विशुद्धि बढ़ाने का उपाय यही है कि हम श्रद्धापूर्वक भक्ति करें। फिर से एक बार अर्थ समझें, हे भगवान इस लोक में हम सब संसारी जीवों के लिए बिना स्वार्थ के एकमात्र आप ही तो हो जो हमारे बंधु हो, जो हमारे हितैषी हो, और इतने ही नहीं आप तीनों लोकों में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे सब जानते हो। ऐसी स्थिति में मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपनी भक्ति के द्वारा अपनी मन रूपी सैया पर आपको बुला करके बिठा लिया है, अब ऐसी स्थिति में मेरे को अगर कोई कष्ट होगा तो क्या आप उसे सहन कर पाओगे? आप सहन नहीं करोगे मतलब मेरा कष्ट दूर अपने आप हो जाएगा। जन्माटभ्याम कथमपि मया देव दीर्घम भ्रमित्वा, इस जन्म रूपी अटवी, अटवी का मतलब होता है जंगल है? इस जन्म रूपी अटवी में कतमवी मया, बाय द वे, बहुत एफर्ट के बाद, जिस किसी तरह से देव हे भगवान दीर्घ भ्रमुत्ता बहुत समय तक भ्रमण करते हुए, बाय द वे मैंने प्राप्त इयम, मैंने प्राप्त कर ली है क्या, तव नए कथा इस फार पीयूष वापी, आपके जिनवानी रूपी अमृत से लबालब भरी हुई बापी का, जैसे कोई जंगल में भटक जाए, प्यास लगने लगे और अचानक बहुत भटकते भटकते और उसे पानी का कोई स्रोत बावड़ी वगैरह मिल जावे, तो कैसा लगता है फिर? फिर वो उसमें और उसमें जल भी बहुत शीतल शीतल भरा हो तो क्या होता, उस अपने आप प्यास भी बुझती है और स्नान करने से सारा संताप भी दूर हो जाता, जितनी भी भटकन थी वो सब शांत हो जाती। कह रहे हैं भगवान मैं भी इस संसार रूपी जंगल में और बहुत समय से बहुत दीर्घ काल से भ्रमण करता हुआ आ रहा हूं, आज मुझे आपकी वाणी रूपी पीयूष वापिका अमृत से लबालब भरी हुई बावड़ी मिल गई है वापिका। तस्या मध्य हिमकर हिम व्यूह शीते नितांतम, हिमकर तो कहलाता है चंद्रमा और हिम व्यूह मतलब बर्फ का बहुत बड़ा समूह, उसके मध्य में और वो कैसा चंद्रमा की चांदनी के समान शीतल, और इतना ही नहीं हिम माने बर्फ के समान शीतल, शीते नितांतम उसमें जल कौन सा भरा हुआ है, यही शीतल जल भरा हुआ है, निर्मग्नाम माम न जहती कथम दुख दावोपतापा, और अब मैं उसमें पूरी तरह से डूब गया हूं, अर्थात आपकी जिनवाणी आपकी स्तुति में मैं पूरी तरह से अवगाहित हो रहा हूं, तब फिर मेरा क्या दुख अपने आप मिट नहीं जाएगा? भगवान का सहारा लेना या कि भगवान की वाणी का सहारा लेना और भगवान के कहे अनुसार जीवन बना लेना, फिर बताइएगा ऐसी स्थिति में क्या हमारा जीवन किसी दुख में पड़ सकता है? अगर पड़ भी जाता है किसी पाप कर्म के उदय से तो वह भी आसानी से दूर हो जाएगा। भक्ति में दुख दूर करने की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो ये नहीं मांग रहे हैं, मुझे दुख सहन करने की सामर्थ्य प्राप्त, दुख तो मेरे असाता से आएगा लेकिन मैं समता रख सकूं, मैं उसको आसानी से झेल सकूं, इसलिए आपकी स्तुति कर रहा हूं। वो तो मैं अपने पुरुषार्थ से अपने साता के उदय से मैं उसको हटा ही दूंगा रोग को, लेकिन वो साता का उदय कब आएगा मुझे नहीं मालूम, जब तक नहीं आया है तब तक मैं अपनी भक्ति तो आपके प्रति करता ही रहूं और उस जिनवाणी का और आपके द्वारा कहे गए मार्ग का आचरण करता रहूं, तो मेरे दुख अपने आप दूर हो जाए। कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हम भक्ति और श्रद्धा रखते रहेंगे और उसी में अवगाहन करते रहेंगे, आपके कहे अनुसार अपना जीवन बनाएंगे, तो जितने भी दुख आएंगे वो आसानी से दूर हो जाएंगे। जो लोग भगवान के कहे अनुसार चलते हैं उन पर भी दुख आते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों पर भी दुख आए हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के ऊपर भी पीड़ा आती है, दुख आता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी श्रद्धा रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, दुख अपने आप पीछे छूटते चले जाते हैं। यही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जन्म रूपी या जन्म मरण रूपी इस जंगल में घूमते घूमते बहुत समय व्यतीत हो गया, मैंने अपने किसी पुण्य से, मैंने किसी भाग्यवश और आपके वाणी रूपी अमृत से भरी हुई वापिका मुझे प्राप्त हो गई है, अब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो उसमें डूबा रहता हूँ। ये जो रोग वोग हो गया है ना, मैंने इसकी कभी चिंता ही नहीं करी, वो तो सेठ जी आए थे तो उनको मुश्किल थी कि मेरा सही सोने का होना चाहिए, इसलिए नहीं तो इतने दिन तो हो गए थे मेरे कुछ के रोग को, मैंने कभी आपसे कहा क्या कि मेरा दूर कर देना, मैं तो सहन ही कर रहा था, मैं तो आप में लीन रहता हूँ, मुझे इसका भान ही नहीं था, वो तो सेठ जी ने आके कहा तो उनकी रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और मुझे इस व्याधि से कोई तकलीफ नहीं है। कहना ये चाह रहा है मेरी व्याधि दूर कर दो ये भी नहीं, और मुझे कोई व्याधि से तकलीफ हो रही है ये भी नहीं, मैं तो आपकी अनुसार अपने जीवन को बना चुका हूँ, आपके कहे अनुसार आपके बताए अनुसार मोक्ष मार्ग से चल रहा हूँ, मेरा मोक्ष मार्ग इस व्याधि व्याधि से रुकने वाला नहीं है, मैं तो आराम से चलते जाऊँगा। लेकिन अब वो देखो सेठ जी पर विपत्ति आ जाएगी, धर्म पर विपत्ति आ रही है, अब फिर उसके बाद आपका काम है, आप सोच लीजिए ऐसा करना है जैसा, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, मुझे तो इतने दिन से है ही, देखना आप कितने इजीली जो है जैसे भगवान को अब मैंने बहुत इतनी आत्मीयता से इतनी सहजता से जहाँ कहीं इतना तो अपन उसी से कह सकते हैं जो कि हमारे बहुत निकट, इसमें ये भी धोते आभासित होता है कि भगवान को अपने इतना निकट मान रहे हैं कि इतने सहज रूप से और अपनी बात को अपनी भावनाओं को भगवान के सामने स्पष्ट। अब इसका जो है दो मैंने जो हिंदी में किया था
वो सुना देते हैं। बिना स्वार्थ ही तीन लोक के एकमात्र बांधव हो स्वामी तुम उपकारी, और जगत का कण कण झलक रहा है जान ज्योति में सदा तुम्हारी। भक्ति भाव से रचित चित्त की मृदु सेज पर मेरे मन में स्वामी जब तुम बात करोगे मेरी दारुण व्यथा देख कैसे तुम धैर्य धरोगे। अपने आप मेरे दुख को दूर करने के लिए तत्पर हो जाओ। मुझे भटकते पीड़ा सहते इस भवन में बहुत काल बीता है, बड़े भाग्य से पाई मैंने स्वामी तेरे वचनामृत से भरी लगालक ज्ञान वापिका। शीतल है वो चंद्र चांदनी हिमकण से भी ज्यादा, वहाँ नहा कर क्या नहीं दिखेगा मेरा ताप पुरातन सारा, मेरा सारा संताप अपने आप उसमें स्नान करते ही मिल जाएगा। इस तरह से ये अपन ने भगवान की भक्ति करी हुई है। हमें आप ये बताएं महाराज कि जन्म मरण का सूचक क्या होता है, ये कितने दिन का होता है, उसे कितनी पीढ़ी तक मानना चाहिए, क्या विदेश में रहने वाले अपने संबंधियों पर भी ये बात लागू होती। बहुत अच्छा प्रश्न है। अपन इसके बारे में जैसा आचार्य ने कहा वैसा समझो। जन्म और मरण दोनों स्थितियाँ अपने जीवन में आती हैं। अपने प्रियजनों का जन्म होता है तब अपन बहुत हर्षित होते हैं, और अपने प्रियजनों का जब वियोग होता है तब अपन दुखी भी होते हैं। वैसे सामान्य रूप से अपन को सुख दुख हमेशा रहता है, लेकिन जन्म के समय और मरण के समय दुख और सुख दोनों की इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है। तब हमारे जीवन में उस चीज़ का असर तो पड़ता है। जब बहुत अधिक हमें सुख होता है तब भी हमें कोई भी चीज़ नहीं सुहाती है, हम अपने सुख में मशगूल रहते हैं, और जब बहुत दुख होता है तब भी ना धर्म पचाता है ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, संसार बेमानी मालूम करना है ना, दोनों स्थितियाँ बनती हैं। इन दोनों स्थितियों में आचार्य भगवंतों ने सामान्य व्यक्ति को महापुरुषों को छोड़ दीजिएगा, महापुरुषों को सूचक ताकत नहीं लगता। ये हम सब सामान्य लोगों के लिए जो कि सागर और प्रेम दोनों को बहुत अच्छी से फील करते हैं, उनके लिए सावधानी बरतने के लिए सूचक ताकत रखा है उन्होंने कि आप मंदिर में इन दोनों स्थितियों में ना जाएं। बाहर से दर्शन करना चाहें तो दर्शन करें, पर मंदिर के भीतर के वातावरण में ना जाएं। क्यों? आप मंदिर में जाएंगे कोई भी परिचित मिल जाएगा, उसे जैसे ही मालूम पड़ेगा वैसे वो तो पता कर ही लेगा और आपसे कहेगा कॉन्ग्रेचुलेशन आपके यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, वहीं पर आपका आदान प्रदान शुरू होगा, या कि फिर वो कहेगा कि मुझे तो मालूम पड़ा कि आपके यहाँ पर वियोग हो गया, आप उसकी सद्भावना पा करके हो सकता है वहीं रहने लगे। दोनों स्थितियाँ, मंदिर का वातावरण इन दोनों स्थितियों से अव्यवस्थित होगा, इसलिए जब तक ये दोनों स्थितियाँ नॉर्मल ना हो जाए, कहीं कहीं पर 3 दिन के बाद मंदिर ले जाते हैं और 13 दिन के बाद मैंने 12 दिन के बाद 13 दिन पूजा पाठ इत्यादि मंदिर की सामग्री खींच लेते जाते हैं 3 दिन के बाद मंदिर में, लेकिन फिर भी चित्त नहीं लगता। हाँ, ये अनुभव की चीज़ है, स्वयं आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कहीं कोई इसमें कहने की बात नहीं, चित्त नहीं लगता वहाँ पर। और चित्त नहीं लगता तो बस 2 मिनट के लिए दर्शन करो, दर्शन का नियम है, दर्शन करने का निषेध नहीं है, लेकिन मंदिर के वातावरण को आप अपवित्र ना करें। इस वजह दूसरी चीज़, ये एक तरह का पनिशमेंट, जन्म और मरण का सूचक एक तरह का पनिशमेंट, एक तरह का प्रायश्चित। जितना संसार बढ़ेगा, जितने संबंध बढ़ेंगे, उतना धर्म कम होता जाएगा, ये इस बात की सूचना। एक बेटा पैदा हुआ है, 10 दिन का धर्म तो उसने छीन लिया, माँ का 45 दिन का, पिता का 10 दिन का, संबंधियों का भी 10-10 दिन का। बेटे ने आते ही साथ ये वार्निंग दे दी है कि जितना संसार बढ़ाओगे उतना धर्म से विमुख होगे, सोच समझ करके करना। और मरण के साथ भी यही स्थिति, जब जन्म है तो मरण भी, तो ये जो है एक तरह का पनिशमेंट, और इसका संबंध अकेली शुद्धि से नहीं है। पहले तो जन्म भी घर में ही होता था तो शुद्धि करना जरूरी है, मरण भी घर में ही होता था, अब तो दोनों कहीं बाहर होते हैं, घर में तो बहुत मुश्किल है, ना घर में कोई मरता है ना जन्म होता है, हॉस्पिटल में होता है और हॉस्पिटल में मरता है अधिकांश लोगों के साथ ही। तो फिर क्या शुद्धि करना घर में, तो ऐसा नहीं है, वो अकेली भौगोलिक रूप से शुद्धि नहीं होती तक पाता, आंतरिक जो मनोभाव है तब उस मनोभाव को समझने के लिए प्रयोग किए गए। एक पंडित जी ने और बहुत नीचे ले जा करके और चूजा ने जो नए बच्चे जन्म दिए थे उनको रखा गया, स्वीकार करने वाले साइकोलॉजी वाले भाग के स्वीकार करते हैं, मैंने पढ़ा था। तो बहुत नीचे पंडित जी में ले जाकर के उन छोटे छोटे से बच्चे जो चिहिया के थे उनको रखा गया ऊपर जहाज में और चिहिया को रखा गया, और दोनों के बीच कॉन्टेक्ट कैसे बनाया गया है सुखदुख का, चिहिया का अगर जरा ऐसा भी स्वीच हो जाती थी वो बच्चे तरफ से जो नए अभी अभी जन्मे हुए उनको तड़पन होती थी। बच्चे कॉन्टेक्ट हजार किलोमीटर दूर भी अपना कोई प्रियजन है क्या उसके सुखदुख से आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे, उसके पत्थर भी लेगा ऐसा तो संभव नहीं है। किलोमीटर की दूरी मायने नहीं रखती, ना वर्षों की दूरी मायने रखती है, देश काल की सीमाएं इस प्रेम में सब खत्म हो जाती है। जिससे हमारा अनुराग है वो हजार किलोमीटर दूर हो और कौ वर्षों से ना मिला हो, तो जब से पैदा हुए हैं और नहीं मिले हैं अपने संबंधियों से, देश ही तक नहीं है उनका, लेकिन फिर भी जब सुनते हैं कि तुम्हारे वो फलाने और उनके यहाँ पर ऐसा वियोग हो गया तो मन को एक बार वो जो ब्लड रिलेशन है वो काम करता है। इसलिए सूतक पाठक हजार किलोमीटर दूर विदेश में भी 25,000 किलोमीटर दूर भी कहना है वहाँ पर भी सूतक पाठक लगे। इसलिए आपके प्रश्न का मेरे ख्याल से पूरा हो गया। एक चीज और रह गई इसमें, पीढ़ी वाला मामला कितनी की, हाँ किसी भी महापुरुष को नहीं लगता, महापुरुष को लगने लगे राजा महाराजाओं को नहीं लगता क्योंकि उनको लगने लगे तो फिर रोज ही सूतक है उनका। 96,000 रानियाँ हैं, कोई के यहाँ भी जन्म होगा कोई भी मरण होगा, जन्म मरण होते ही रहेगा उनके यहाँ पे, उनको नहीं लगता सूतक पाठक। घर गृहस्थी उनकी इतनी बड़ी है कि उसमें अभी भी कई जगह है, हम शाहपुर में रहे वहाँ पर 80 घर हैं एक ही परिवार के। अब जब सूतक लगती है तो सीधे 80 बंद होते हैं, और वो लोग कह रहे थे कि हम लोग इस तरह पूरे कुटुंब के 500 घर हैं आस पास। हम लोगों के यहाँ पर 6 महीने वो कह रहे थे साल में सूतक पाठक लगाए, 6 महीने है कि ठीक ढंग से पूजा पाठ होता नहीं, तो हमारे यहाँ से इतना बड़ा परिवार है कि उसमें सूतक था। तब उनके लिए फिर विचार करके पंडित जी से पूछ करके उनका थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसे कैसे काम चलेगा। तब फिर जो है पीढ़ियों की गिनती करने लगे कि भाई जरा पुराना रिश्ता हो गया है तो फिर कम माने, 4 पीढ़ी तक तो पूरा मान लो, फिर बाद में 5वीं पीढ़ी से 6 दिन का या 5 दिन का 4 दिन का 2 दिन का ऐसे करके। ये मेरी समझ में नहीं आया आज तक, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा पीढ़ी का जो है और पंडित जी वगैरह से पूछना। पीढ़ी मेरे समझ में नहीं आई कभी भी, मुझे थोड़ी सी रिश्तेदारी भी थोड़ी समझ में आती थी, मैं पूछ लेता था माँ से ये कौन लगे अपने, इनके पैर छूना कि नहीं छूना, बस उसके ज़्यादा अपन के समझ में आई नहीं कभी, तो ना अपन को ये मालूम, आप पता कर लेना कहीं से है ना। पीढ़ी वीढ़ी का मंदिर के अंदर, हाँ बाहर मानव खंड इसलिए बनाए जाते, हाँ तो बाहर से कन्नत, हाँ और मानव खंड इसलिए बनाए जाते थे कि आसानी से मानव खंड के पास बैठ के बाहर कोई और पूजा पाठ, या फिर जो है अर्ली मॉर्निंग, मैंने इंदौर में देखा, हाँ नहीं करें तो अच्छा है, इंदौर में तो लोग जो है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब कोई नहीं मिलेगा मंदिर में, ताकि मिलेंगे तब भी बातचीत होगी, सुख दुख की बात होने लगेगी, और स्थिति सुख दुख की बात करने की रहती नहीं, घर ही मिल लो, घर में आना वहीं थोड़ा कम हो जाएगा रोड हो लाइट करके शांति। अब तो खैर रोना धोना बहुत कम हो गया, वैसे बहुत मुश्किल हो गए लोग, लेकिन यहाँ तो बहुत बहुत मजबूत हो गए बहुत लोग, अब मेरे इतना मुँह नहीं रहा आज है ना। हाँ ठीक है, असल में हमें फील होना चाहिए कि हमने संसार बढ़ाया है तो देखो हमारा धर्म छूट गया। मुख्य तो मुझे ये लगता है इसके पीछे लॉजिक कि हमारे जितना हम संसार बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा धर्म छूटे, और हमें अपने बच्चों से फिर ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उन्हें आते ही साथ कह दिया था कि धर्म तो नहीं करने देंगे आपको, देख लो आते ही साथ उसने 10 दिन का कह दिया कि धर्म नहीं कर सकते, तभी तो काम आता है कंठस्थ अंतस्थ धर्म और कंठस्थ विद्या, ऐसे आड़े समय पर काम आती है, हाँ दोनों चीज़। हमारे घर में कैसा लग रहा है आपका जी और महाराज का लग चुका, लग गया है आपका भी और छोटे महाराज का भी हो गया, लेकिन हम दोबारा पैसा लगाएं तो आप आएंगे कि नहीं, अरे ये किसी छोटे बच्चे ने लिखा हुआ है दोबारा पैसा लगाएंगे तो नहीं, क्यों किसी ने कुछ ऐसा कह दिया था कि आप क्या हो गया, ऐसा थोड़े ही है, वो तो बना लिया है अपन ने, वैसे तो जाना चाहें तो तुरंत ही दूसरे दिन भी जा सकते हैं, लेकिन चर्या क्यों होती है, दो कारणों से, आशा की निवृत्ति राज देश का परिहार। सब लोग कह रहे हैं कि भू स्वामीनाथ रथ यहाँ पधारे, लेकिन सबके यहाँ तो जा नहीं सकते, आशा की निवृत्ति करने के लिए कुछ ना कुछ विचार करके जाना, इनमें से कैसे डिसाइड करोगे, इनके यहाँ नहीं जाना इनके यहाँ जाना, ऐसा तो कर नहीं सकते। इनमें क्या बिगाड़ा आपका, क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप, उनके सामने से निकल के जा कैसे रहे हैं आप, और वहीं वहाँ उनसे कौन सी रिश्तेदारी है जो वहाँ जा रहे हैं। नहीं आप पूछो क्या नहीं पूछो, मेरा मन तो मेरे से पूछेगा, मुझे किस बात, मुझे तो जवाब देना पड़ेगा ईमानदारी से। तो आखिर कोई डिसाइड करने का क्राइटेरिया तो होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया इसलिए फिक्स किया जाता है डिसाइड करने का और कुछ नहीं। और राज देश के परिहार के लिए मैं चाहूँ एक कलश की विधि ले बाहर निकलूँ और फर्स्ट एक कलश मिलने वाला है तो बहुत बड़ी चीज़ है क्या, लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले नंबर जिसका ज़्यादा दिन का हो गया उसके यहाँ जाऊँगा, वहाँ पहले देखूँगा बाद में फिर। आशा की निवृत्ति और राग देश के परिहार के लिए ये करना पड़ता, नहीं तो हम तो निकले और कब से चले गए यहीं का, क्या दिक्कत होने वाली, दो कल दस लोग खड़े रहते कहीं तो फंसोगे बच्चे जाएंगे कहाँ से। मतलब अपनी भाषा में क्या कहेंगे, हम ऐसे बोल देते हैं आप उसका अन्यथा नहीं लें, मेरा मतलब कि सब लोग इतने अरेंज करके खड़े रहते हैं, तुम एक नंबर ले लो, तुम दो ले लो, तुम प्रधान ले लो, तुम ये कर लो, क्या बात है, कहीं ना कहीं तो आएंगे तो कहीं ना कहीं बन ही जाएंगी अगर ऐसे करेंगे तो। ये भी सोचना पड़ता है, उसमें मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने कहा था कि क्या दोनों महाराज एक जगह नहीं जा सकते, जा सकते हैं भैया, दूसरे दिन भी जा सकते हैं, वहीं से वहीं दूसरी बार भी जा सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि दूसरे को संकुलित ना हो जाए हमारी क्रिया से। कि देखो आप खुद देखिएगा कि जिसने आज लगाया और उसके यहाँ पहुँच गया और बाजू में चार दिन का खड़ा है वो अभी तक तो बर्दाश्त कर लिया उसने, लेकिन फिर नहीं कर सकता वो, हाँ नहीं सहन नहीं होता, हम भी हों उसकी जगह, आपसे छोड़ो हम भी हों उसकी जगह तो हमारा भी चित्त जो है विचलित हो जाएगा। इतना कोई कितनी भी तपस्या का साधना करने वाला भी हो तब भी एक बार ऐसा मेरा क्या पाप कर दे कि इनका तो अब भी शुरू हुआ और इनके यहाँ पर आज हो गया और मैं पाँच दिन से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कौन सा ऐसा पाप कमाया। बहुत संकोच होता है व्यक्ति को, उस संकलेश से बचाना भी है, धर्म ध्यान करवाना है। आहार की क्रिया संकलेश का कारण नहीं बननी चाहिए, आहार की क्रिया तो विशुद्धि बढ़ने का कारण बननी चाहिए। इस वजह से आपका प्रश्न ठीक है कि हम दूसरी बार लगाने से आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको देंगे ये हम पहले बता दे रहे हैं आपको। हाँ ये प्रायोरिटी तो थोड़ी सी जनक देखो जिसने बहुत भाई मेरे साथ मैंने ईमानदारी से बोल दिया आपको अच्छा लगे क्या नहीं लगे है कि नहीं, मैं इस चीज़ का ध्यान रख के चलता हूँ। किसी व्यक्ति को जो है मुझे मालूम पड़ जाता है कि इनको असुविधा है इनको बाहर जाना वो भी अच्छा थी कोई बात नहीं, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला, हम यहाँ से सोच के निकलेंगे कि फलाना वहाँ खड़ा होगा चले जाएंगे दूसरे के यहाँ कल चले जाएंगे, क्या फर्क, जाना तो सबके यहाँ पर है कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन अब किसके यहाँ अच्छा और एक चीज़ और है इतना नहीं समझना आपकी, हम अपनी तरफ से जाना चाहें तो जा सकते हैं, हम अपनी तरफ से जा भर सकते घर में आहार नहीं कर सकते, आहार तो आपके दाना अंतराय से ही होगा, नहीं तो अंतराय आ जाएगा। मैं अगर रात पूर्वक मेरा अनुभव है वर्षों का, मैं अगर रात पूर्वक चला भी जाऊं और मैं अगर किसी के यहाँ देश पूर्वक नहीं जाना चाहूं तो वहीं जाना पड़ेगा अगर उसका निमित्त होगा। हाँ ये दोनों चीज़ें देख ली मैंने और कई कई बार देख ली, इसलिए ये प्रक्रिया बिल्कुल एकदम ऐसी है कि इसमें विकल्प करने का है नहीं, खूब विशुद्धि बढ़ानी चाहिए आकुलता ना करके और हर्षित होकर के इस प्रक्रिया को, क्योंकि धर्म ध्यान की प्रक्रिया है। दूसरी बार हम कैसे कहें कि आ जाएंगे क्या छोटे बच्चा ने लिखा हुआ बर्मी जी तो जो है इतनी सरल और सहज थे, उनके जब खिलक अवस्था में थे वहाँ से निकलते थे सागर में मंदिर में थे तो आहार करके लौटे तो छोटे से बच्चे ने रस्ते में कहा बाबा जी आप हमारे यहाँ पर कैसा लगा आप आते नहीं हैं, कहाँ है तुम्हारा घर, वो वहाँ पर तो है जहाँ से आप वहाँ जाते आश्रम में रोज, अच्छा तो कल माँ से कह देना कड़ी बना ले। देखो आप बड़े झोले पल में उनने भी कह दिया माँ से कह दो उनको कड़ी बहुत अच्छी लगती तो उन्होंने कह दिया कड़ी बना ले। अब उसने जाके माँ से कह दिया, मैं आज की भी नहीं कह रहा हूँ सावक भी इतना ही निर्मल चित्त का था और साधु भी, आज तो दोनों के अंदर गाय पहुँच दोनों के अंदर है बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। अब इतनी सहजता से उनकी माँ ने भी और दूसरे दिन बहनी जी पहुँच भी गए उनके यहाँ पर और आहार करके आ गए और क्या लिया उन्होंने आहार में, अकेली कड़ी बिना नमक की और रोटी बस दोनों चीज और कुछ नहीं लिया। लोगों ने कहा महाराज आपने कुछ नहीं लिया, कहने भैया वो लड़का बहुत कह रहे थे तो हमने सोची कि हाँ फिर हमने सोची हमने कह दिया है ये तो ठीक नहीं तो हमने प्लास्टिक भी कर दिया सब रख छोड़ दिए और उनका चित उनका मन रह जावे इसलिए हम हो करके दिया। तो दवा जो है वो उसमें आहार की प्रक्रिया में ये भी शामिल, मैंने धर्म ध्यान हो सबका चित्त जो है प्रसन्न हो राग द्वेष ना हो, मुख्य बात इसमें ये है आपने अच्छा पूछा, दूसरी बार होने में कोई नहीं वो नहीं है, अभी तो मैं जहाँ गया था वहाँ दूसरी बार हुआ, मैं पहली बार आया था जब नहीं जब मैं पहले आया था 13 दिन तक हुआ था सर, मैं सोच रहा था कि अभी हुआ नहीं ठीक, अभी तो ऐसा नहीं हुआ कि डबल डबल नहीं हुआ ठीक है अभी नहीं हुआ ठीक है मैं किया। लेकिन बाकी लोगों से हासिलता हो जाएगी जल्दी से। जैसे पूजा की प्रक्रिया समझा रहे हैं वैसे ही ध्यान की प्रक्रिया समझाने की कृपा करें। मेरा मन तो बहुत था लेकिन हमारी परंपरा में वो चीज़ नहीं है। हाँ, हम त्यागी व्रति को ही ध्यान सिखा सकते हैं अगर कोई जानना चाहे हमारे साथ सामायिक करे तो। लेकिन कॉमन व्यक्ति को हम ध्यान के बारे में समझा तो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल वक्त आप जैसा प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि आपके भैया जी पूजा करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे, हम तो सिर्फ पूजा के बारे में बता रहे हैं। ऐसे हमारा मन है कि अगर संभव हुआ परिश्रम करने तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी आ जाएंगे कोई तो वो आपको वहाँ पर पंडित जी हैं इंदौर में और बहुत बढ़िया सामायिक करवाते हैं। हम इंदौर के प्रवास में थे तो वो यहाँ पर रोज लोगों से 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते थे बढ़िया बैठ करके और सामायिक, तो वो उससे पद्धति भी सीखने में आ जाती है और उसी पर थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है। अगर वैसा बने जाते कर देंगे और पूजा की प्रक्रिया को आप अच्छे से समझ लें और ध्यान के बारे में भी ध्यान न कहें तो उसको सामायिक कहेंगे अपन कि सामायिक कैसे करनी चाहिए। खाने में चढ़ाए गए चावल का क्या करना चाहिए? तीन चीज़ें हैं, या तो खाने में चढ़े हुए चावल को आयमरी चावल की तरह प्रक्षेपित कर देना चाहिए। आपके मन में इतने में संतोष नहीं होता तो फिर उसको जो है उसमें जल डाल करके माथे से आँखी का लगा करके अब आयमरी चावल हो गए फिर उनको जो कहते हैं क्षेपन कर दें। और अगर उससे आगे बढ़ना चाहें तो इन चावलों को अग्नि में समर्पित कर दें। तीनों में से जो प्रक्रिया आप करना चाहें आपको जिसमें सेटिस्फेक्शन, तीनों प्रक्रियाएं जो है लिखी हुई हैं, इसमें राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये क्यों करते और ये आप क्यों करते। आपको जो करना, आपको आलमरी चावल मान करके उन्हें सीधा प्रक्षेपित करना तो कर दो, कोई नहीं पूछने वाला। आप उसमें जल डाल के माथे पर लगा करके डालना चाहे तो वैसा कर लो, अग्नि में डालना अग्नि में डालना। तीनों प्रक्रियाएँ हैं आगम में, अब जो जिसको करना। ओम में पंच परमेश्वर विराजमान है तो उन्हें तो उसे मिटाना चाहिए या नहीं, और अभी मिट जाए तो क्या करना चाहिए? देखो अपन कोई भी चिन्ह प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक है ओम है ये लिख करके अपन कहीं मिटाते नहीं हैं। सहज रूप से मिट जाए तो उसमें अपना दोष भी नहीं है। देखो जैसे कि कोई ने स्वस्तिक बना दिया चावल से, बना देते हैं लोग, फिर बाद में माली जी आए या और कोई आया, और कोई आए तो उसने उसी चावल पर और भी चावल चढ़ा दिए। माली जी आए उन्होंने उसको उठा करके रख दिया, तो क्या उन्होंने स्वस्तिक मिटाने के लिए मिटाया है क्या? नहीं, उसको वहाँ से हटाना है सामग्री को तो हटा के रख दिया, मिटाने का भाव तो नहीं। अपने हाथ से भी अगर अपन ने समेट के रख दिया तो उसमें मिटाने का भाव नहीं। पूजा की थाली में स्वस्तिक बना लेते हैं, बाद में पूरी द्रव जब समेटते हैं तो नीचे बना हुआ स्वस्तिक अपने आप उसी में लीन हो जाता, विलीन हो गया, मिटाया नहीं, वो उसी में विलीन है। इसी तरह जब अपन स्वीकार लिख देते हैं और भगवान जी को रख देते हैं, या ओम लिख देते हैं और भगवान को विराजमान करके जल धारा छोड़ते हैं तो वो उसी में डिजॉल्व हो जाता, उसमें घुल गया, उसमें मिल गया। अपन ने मिटाया तो नहीं, न मिटाने का भाव। अगर मिटाने का भाव है तो फिर वो दोष युक्त है। अगर मिटाने का भाव, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमें बनाने नहीं चाहिए क्योंकि मिट जाएगा वो, नहीं, जो क्रिया जैसी है उसको वैसी करेंगे, अपने भावों को घर संभाल के रखना चाहिए। महाराज सफ़ेद धोती दुपट्टा भी पहन सकते, पूजा में पहन सकते, इसमें क्या दिक्कत है? तीन रंग हैं अपने यहाँ पर, हमने कहा था सफ़ेद भी और केसरिया भी और पीले रंग के वस्त्र, तो जिस तरह से भी अभी आपके यहाँ पर दुपट्टा केसर पीले रंग का और सफ़ेद का धोती पहनते हैं, और कई जगह सफ़ेद ही दुपट्टा रखते हैं और सफ़ेद ही धोती पहनते हैं, कई जगह नहीं, कई जगह दोनों दोनों पीले ही रखते हैं, तो जहाँ जिस तरह से है उसमें कोई। महाराज एक कहानी या भजन सुना दीजिएगा। अरे वाह, कहानी सुना, कहानी तो हम रोज सुनाते हैं कोई ना कोई, भजन हमारे पास उतना ही थोड़े से हैं, हम बार 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 क्या सुनाएं हैं। क्या करना चाहो आप, जो आप करना चाहो वही हम आशीर्वाद दे देना, इसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। पंडित जी वगैरह से भी पूछा था कि इसमें कोई विशेष प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे, बस इसकी विना होनी चाहिए, अभिनय नहीं होनी चाहिए, पैरों में नहीं गिरनी चाहिए क्योंकि पूजा की द्रव है बस। और फिर आपको अग्नि में करना अग्नि में, पेट में करना तो पेट में, जहाँ भी चेतन करना कई लोग करते हैं पेट में भी चेतन कर दो, नहीं करना है। हाँ, निर्माल्य का दोष लगेगा क्योंकि हमने ही चढ़ाई है और हमने उसको ग्रहण कर लिया, इसलिए वैसा ना करके उसे तो समर्पित कर दिया है तो समर्पण ही होना चाहिए, अपन को उसको स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सही, मैं जगत में मेरा सब बुझी